अब कुछ अहकाम आते, ये तो रूह थी। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन। तसल्ली भी है इसमें और हुक्म भी है। तसल्ली किस बात की है कि थोड़े से दिन है गुजर जाएंगे, इतना के शोर मचाते हो, ठीक है। और हुक्म क्या है कि अगर छूट गए तो रोजे पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि फमन खान अमिन को मरीदन, तुम में से जो कोई मरीज हो, औ अला सफरिन, या सफर पे हो, ट्रेवलर हो, मुसाफिर हो, फायदा तुम मिन अय्यामिन उखर, तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करो, ये हुक्म है। पता क्या चला कि रोजा तो फर्ज है, लेकिन किसी मजबूरी से अगर रोजा छूट जाता है, छूट सकता है, एक्सेप्शंस मौजूद है, कैसे? मरीज नंबर एक, बीमारी। कौन सी बीमारी? जिसमें रोजा रखने से बीमारी के बढ़ने का खतरा हो। ये नहीं कि इधर कट लग गया छुरी से, मैंने रोजा नहीं रखना, कट लगा हुआ। ऐसी बीमारी कि जिसमें इंसान बच ना सके, या जिस तरह भी है मौत का डर हो, तो फिर ना रखे, कोई गुनाह नहीं। लेकिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में रहो, ठीक है। फिर दूसरी चीज है सफर। सफर में जाए बंदा तो रोजा छोड़ सकता है, बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात यह है कि सफर हमेशा बामकसद होता है इस्लाम में, ऐसे ही बंदा बस इधर से उधर घूमने के लिए नहीं जाता। तो सफर में जिस काम के लिए गए हो ना, फटाफट करो और वापस आ जाओ। हो सकता है रोजे की वजह से नकाहत हो जाए, तुम्हारी तबीयत पे बोझ हो, सुस्ती हो, तो ज्यादा दिन रुकना पड़े, तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हदीस में सफर को अजाब का टुकड़ा कहा गया। इसलिए कहा कि रोजा छोड़ सकते हो तो छोड़ लो, कोई हर्ज नहीं। अब इसमें सफर की आसानी, कल की, आज की, नो प्रॉब्लम, जहाज में जाएं या घोड़े पे जाएं, एक ही बात है, आपकी मर्जी रखें। शर्त एक ही है कि फायदा तुम्हें नहीं आमे नुखर। ये बंदा खुद सोच लेता है कि अच्छा बाद में रखना मुश्किल होगा तो रख ही लेता हूँ, रख ले तो भी गुना नहीं, ना रखे तो गुना नहीं है, दोबारा करना पड़ेगा। दूसरी एक और वजह भी होती है सफर में, और वो क्या है कि आप अमेरिका से रोजा रख के बैठे, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ आए, आपका दिन रात रात दिन में बदल जाएगा। हमने ऐसे बहुत सारे दिन देखे हैं कि बैठते सुबह को हैं तो जब निकल जाते हैं वहां, तो वहां फिर सुबह ही होती है, 22 24 24 घंटे का रोजा हो सकता है, टाइम बदल जाते हैं। इस्लाम यूनिवर्सल रिलीजन है, ये सिर्फ मेरे इस शहर को नहीं देखता, पूरी दुनिया को देखता है। तो इस तरह की कवाहतों से बचने के लिए अगर रोजा छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, कोई हर्ज नहीं है। यहां तक बात हुई। अब यहां लफ्ज जरा मादूदात को देख लें, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है, लेकिन फायदा हो भी सकता है आपको अगर थोड़ा गौर करें। अदद लफ्ज है ना इसका, मादूदात, ठीक है। अरबी जुबान में गिनती मुख्तलिफ तरह की होती है। इंग्लिश में तो हम पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, उर्दू में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सीधी सीधी है। लेकिन अरबी जुबान की गिनती भी बड़ी खूबसूरत है। अभी यहाँ डिटेल्स नहीं बताऊंगी, लेकिन इशारा करूंगी सिर्फ कि इसमें मुजक्कर और मोनस के लिए अलग लफ्ज आते हैं, ठीक है। जैसे एक के लिए अहद है तो अहदा, हाँ। फिर इसी तरह आप देखिए कि 1 से 3, 3 से 9, छोटे छोटे अदद है, इनके लिए एक और साउंड होती है, 10 के बाद के लिए कोई और है। जैसे आप देखिए 1 2 3 से 9 तक सिंगल लेटर्स होते हैं ना, फिर 10 से लेकर 19 तक 1 और 9, 1 एंड 2, 1 2 3, इस तरह ना, बस इसी को समझ लें, ठीक है। फिर उसके बाद 100 के बाद 3 लफ्ज़ शुरू हो जाते हैं, 1000 के बाद 4, तो मादूदात, मादूदात, ये लफ्ज़ ना ये जमा से भी आगे जमा है, आप ये कह लें। असल लफ्ज़ था मादूद, जिसको गिना जाए, शुमार किया हुआ, काउंटेड के मानों में लिख लें इंग्लिश में। इसी से मोनस बनी मादूदा, एक गिनी हुई चीज, और मादूदा तो उनकी जमा मादूदात, 3 दिनों पे कहते हैं इसका इत्तलाक होता है। इशारा है, कहते हैं इसमें उस फेज की तरफ जो उस महीने में 3 रोजे थे, बस इतनी बात, लिख लें तो लिख लें, नहीं लिखें तो घबराए नहीं, ठीक है। गिनती के चंद दिन है, बास कहते हैं कि इसमें इशारा वो 3 दिनों के रोजों की तरफ है, बास कहते हैं नहीं ये आज की भी है, फर्क इससे कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि हुक्म वही है जो आपको शुरू में सुना दिया गया। आगे चलिए, वाललजीन युतीकूनहू, ये है असल लफ्ज जिसको आप इसकी हिस्ट्री से पहचान लेंगे, और तुम में से जो लोग ताकत रखते हैं, इसकी लफ्ज यही है ना, युतीकूनहू, ताकत रखते हैं, लेकिन फिदयतुन ताम मिस्कीन, वो फिदिया दे दें एक मिस्कीन को खाना खिलाने का, ठीक है। अब क्या समझ आई? अब इसे एक लफ्ज पे बहुत सारी बातें इन लोगों ने की, लेकिन मैं आपको इसमें से बस पिक करके वो बात बताती हूँ कि आपको अभी मैंने हिस्ट्री में सुना दिया कि रोजे की फर्जियत में एक ऐसा इंटरफेस गुजरा कि चाहे रोजा रख लो चाहे फिदिया दे दो। एक तफसीर इसकी ये है, युति कू ना हो ताकत रखते हो लेकिन कोई बात नहीं, फिदियतुन तामु मिस्कीन किसी और को दे दो। बाज़ कहते हैं कि इस आयत में उस हुक्म की तरफ इशारा है जब अभी रोजे की दरमियानी नौइयत चल रही थी, चाहे रोजा रख लो चाहे मिस्किन को खिला दो। एक तफसीर है, बिल्कुल ठीक है ये। एक दूसरी तफसीर है, वो कहते नहीं युतीकूनहू से पहले ला है, तो मानी क्या बन जाएगा, तुम में से जो लोग नहीं ताकत रखते इस रोजे की तो एक मिस्किन को खाना खिला दे। तो आजकल ऐसे ही है, वो कहते हैं इससे मैंने ला है। और इसकी 6-7 तफसीरें हैं जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आज हुक्म यही है, रोजा रखना है, मजबूरी में छूटेगा तो फिदिया देने के लिए एक मिस्कीन को खाना खिला देंगे। वो कितना होगा, बस एक वक्त का खाना, ठीक है। इसके अहकाम आप सब इंशाल्लाह किताबो सौम में पढ़ेंगे, इधर ही अल्लाह ने चाहा तो आपको पढ़ाएंगे। हाँ, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लहु, जो कोई खुशी से नेकी कर ले या ज्यादा कर ले तो ये इसके हक में बेहतर है। अब इसको देखिए, पहली तफसीर के साथ अगर इस हिस्से को जोड़ेंगे तो क्या मतलब है कि रोजा रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो किसी को रखा दो, लेकिन खुशी से खुद रख लो तो ये ज्यादा बेहतर है। समझ आ रही है बात, एक तफसीर। और अगर दूसरी तफसीर कर लें जो भी बाद में बताई कि रोजा नहीं रख सकते तो फिदिया दे दो। अब फिदिया तो दे दिया, वक्ती तौर पे तो कफारा पूरा हो गया, लेकिन फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, अब कफारा भी दे चुके हो बाद में फिर रोजा भी रख लो, ये मुराद है। कौन इस समंदर को पिएगा, नहीं पी सकते। अब मैं तो आपके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह खेलती हूँ, यकीन करें, हालांकि इस एक एक लफ्ज की बीसियों तफसीरें मेरे पास मौजूद होती हैं, पर मैं आपको उलझाना नहीं चाहती। हुक्म के लिए पढ़ रहे हैं कि अपने अमल के लिए पढ़ रहे हैं कि इसके ऊपर लोगों ने जिंदगी ऐसे ही नहीं लगा दी। पेट के तकाजे नहीं हर वक्त पूरे करते थे, जो मिलता था खा लेते थे, नहीं मिलता था तो वो कई के दिन नहीं खाते थे। उनका ये हाल था क्योंकि उन्होंने इस दीन को अपनी जिंदगियां दी हुई थी, उन्होंने ये मोती जमा किए जिसको आज हम जमा करके आप तक पहुंचाते हैं। ये उलमाए कराम की कोशिशें, मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन कराम, आप तो उन तफसीरों के नाम तक नहीं जानते होंगे जिन्होंने इन गुत्थियों को खोला। वो तो इतने मुश्किल नाम है, लेकिन आज अगर हम अपने लिए पढ़ना चाहें तो हमारे लिए इसमें यही बात है कि रख भी लो और उसके बाद किफारा भी दे दो तो भी ठीक है। और हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे, हर हाल में रखा, हर मौके पे रखा। कावान तसूमु खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम रोजा ही रख लो तो ये तो सबसे बेहतर है। आगे नहीं इशारा कि मिस्कीन को खिला रहे हो अच्छी बात है, छोड़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह का मशवरा कहे कि रोजा रख लो तो ज्यादा बेहतर है, यानी मुश्किल हालात में भी रख लो तो ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीसे कुदसी कहते हैं इसको, कि अस्सौमु ली व अना अज्जी भी, रोजा मेरे लिए है इसका अजर मैं दूंगा। आप देखिए कि रोजा कितनी हिडन इबादत है ना। हम सब इधर बैठे हैं, सुबह से अभी जोहर का वक्त होगा, जो भी उठ के पढ़ेगा सबको पता चल जाएगा ना, हत्ता के असर का वक्त हो जाए और कोई उठ के ना बैठे तो हमें पता चल जाएगा ना इसने नहीं पढ़ी। और इबादत कोई देख लीजिए, सदका कोई किसी को देता है, कम से कम एक बंदे को तो पता चल जाता है ना जिसको आप देते हैं। रोजा एक ऐसी इबादत है अल्लाह और बंदे के बीच में एक राज है। आप नहीं खाना खा रहे, ना खाएं, हम ये नहीं कह सकते कि आपका रोजा है। आप कहें रोजा है बाथरूम में जाके पानी पी लें, हमें तो नहीं पता ना, ये छुपी हुई चीज है। और हकीकत है कि तकवा ना और अल्लाह की मोहब्बत ना तो बंदा रोजा नहीं रख सकता। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि इसका अजर मैं तुमको दूंगा और तुम्हारे लिए इस बात को आसान कर दिया जाता है, तुम इसको जितना करना चाहो कर लो। अब यहाँ चंद बातें रमजान के रोजे में, हमने मरीज की बात की, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ शायद को गो थ्रू करके अहकाम इकट्ठे एक दफा चाहे कल बोल दूंगी, जिंदगी रही तो, कल से मुराद अल्लाह ने जिंदगी दी तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगली आयत पे चले ताकि आप समझ सकें। अब यहाँ लफ्ज आ रहा है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये रमजान का बाबरकत महीना है जिसमें कुरान का नजूल शुरू हुआ। कुरान क्या है, हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है। और नंबर दो व बैजीनात मिनल खुदा, और जिसमें राह हक पाने वाला और वल फुरकान, हक और बातिल के फर्क की रोशन निशानियां हैं। बस इतने को ब्रैकेट्स में लगा लें। आयत के शुरू से लेकर वल फुरकान तक रमजान के नाते से कुरान की बात है। यहाँ पे थोड़ा सब समझ लें अगली आयतों पे जाने से पहले कि रमजान के दो तोहफे हैं। रमजान के दो तोहफे हैं। नंबर एक, कुरान। क्योंकि रमजान के महीने में कुरान का नजूल शुरू हुआ था। पहली वही रमजान में शुरू हुई थी, इकरा बिस्मी रब्बी कल्लजी खलक। नंबर एक। और दूसरी बात जहां नोट कीजिएगा कि ये कुरान जो इस वक्त मेरे और आपके हाथ में, तकरीबन 22 साल 6 महीने और कुछ दिन में नबी सल्लम के कल्बे अतर पर नाजिल हुआ था। मक्की दौर 13 साल का और 10 साल मदनी, कुछ दिनों के कमोबेश से। अब ये तो 23 साल में उतरा। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो रमजान के महीने में उतरा, तो समझ लें। अब देखिएगा, समझिएगा, नज़ूले कुरान के दो मरहले हैं। एक मरहला अल्लाह ताला के पास से, जिसको आप लौहे महफूज कह लें। लौहे महफूज ऐसे कि जैसे आपका क्लोजेट है, स्टोर, पीछे छुपा के आपने चीज़ें रखी होती हैं, पहले चीज़ें वहां जमा करते हैं, ज़रूरतन वहां से घर के किचन में ले आते हैं। इतनी बात समझ आती है। कुरान सबसे पहले लौहे महफूज में था, जब अल्लाह ने दुनिया बनाई, चीजें बनाई, रखी वहां, सब जगह होगा। उधर से आसमाने दुनिया जो ये नीचे हमें दिखता है, इधर यकमुश्त पूरे का पूरा एक ही वक्त में नाजिल हो गया, और वो रमजान का महीना था। आसमाने दुनिया से इस जमीन तक आने में ये दूसरा नजूल है। ये 22 साल 6 महीने लगे। बात समझ आ गई? ठीक है। नंबर एक, दुनिया में कुरान का नजूल रमजान के महीने में शुरू हुआ, इसलिए इसको रमजान में कहा जाता है। और दूसरी बात इसमें क्या समझ आती है कि रमजान के अंदर पूरे का पूरा कुरान लौहे महफूज से, यानी जो बेसिक स्टोरेज है जगहों का, वहां से उठाकर इसको इधर रख दिया गया, पहले आसमान पे जो हम सबको दुनिया में दिखता है, और उसके बाद से फिर ये इधर आने में 22 साल लगे। तो आप कह सकते हैं कि रमजान की शान कुरान से है। क्यों? इसलिए कि वो कुरान जो रोजे की हालत में और जो भूख की हालत में समझ आता है ना, वो वैसे नहीं समझ आता। ये तो आप भी मानते हैं, भरे पेट के साथ कुरान नहीं पढ़ा जाता। यहां भी आप देखते हैं कि ब्रेक से पहले जो आप पढ़ते हैं और ब्रेक के बाद जो आप पढ़ते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये चीज मैं यहां बैठ के आपको बता सकती हूँ। चाहे आपको इस वक्त भूख लगे हो, थके हो, अगर आप सुबह से ही नाश्ता करके आते हैं तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे, कभी नहीं थकेंगे, कभी भी आपको नींद नहीं आएगी। और इसके बरक्स दूसरी चीज है। तो लिहाजा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान इसमें नाजिल हुआ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम हर साल रमजान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दौरा करते थे, दौरे कुरान जो आज हम कहते हैं ना। जितना कुरान का हिस्सा नाजिल हुआ होता था ना उस साल में, उसको दोहराते थे, रिवाइज करते थे। और आखिरी साल था जो आपकी जिंदगी मुबारक का, उस साल आपने दो दफा किया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसी तरह 23वीं, 25वीं और 27वीं रात, तीन रातों नबी सल्लम ने जमात से क्याम किया, तरावी जिसको आज के दौर में आप कहेंगे। ठीक है, कुरान पाक की कुछ सिफात इधर आई हैं। नंबर एक, हुदन। किताब क्या है? हुदन लिन्नास। हिदायत कैसे मिलती है? समझेंगे तो समझने के लिए क्या जरूरी है? अपनी जुबान में पढ़ना। अब आप मेरी जुबान से उर्दू में सुन रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है ना। ये है हुदन लिन्नास। तो जिन लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उनको समझ कहां से आएगा? बात वाजे। तो गोया कि इस कुरान का नजूल क्यों हुआ? ताकि इससे गाइडेंस ली जाए। आप इसको यूं समझेंगे जैसे एक मैनुअल होता है। आप एक माइक्रोवेव ओवन खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, बुकलेट। मोस्टली लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो बुकलेट्स होते हैं उस पर कि रीड इट बिफोर यूज़। सिंपल सी बात है, यूज़ से पहले पढ़ लो। उसमें लिखा होगा इसको 220 वोल्टेज पे डालो, 420 पे डालो, इसमें पानी डालो ना डालो, खुश करो, करते हैं ना। एक बंदा मशीन लाए, झट से उसको ला के सॉकेट में डाल दे और झट से फट जाए, होगा क्या? जल्दी उठा के ले जाए कंपनी के पास कि आपने कैसी मशीन बनाई है, ये तो चलती नहीं, ये तो गंदी है, ये खराब है, ये तो जल गई। तो कहेगा जी आपने इसको इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में पढ़ा था, कि वो क्या होती है, मैंने तो नहीं पढ़ी, मेरा ख्याल था मुझे आता है। फौरन उसके सामने वो बुकलेट दिखाएगा कि देखो ये लिखा था इसमें, अब बताइए कोई क्लेम चलेगा उसका? सेम यही हाल कयामत के दिन उन लोगों का होने वाला है जो इस किताब को किताब हिदायत बनाए बगैर जिंदगियां गुजार रहे हैं। आज इंसानियत में जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो दुख है, फैमिली सेटअप बिगड़ा हुआ है, शोहर बीवी का रिश्ता बिगड़ा हुआ है, माँ बच्चों की तरबियत नहीं कर रही, ये वो, उसकी वजह ये कि इस मैनुअल ऑफ गाइड को हमने पढ़ा नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई एक याहू मैप निकाले घर से निकले कहीं जाने के लिए, तो उसको अपनी विंडस्क्रीन पे लगा ले कि इसकी बरकत से मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ से मैनचेस्टर। नहीं पहुंचेगा, इम्पॉसिबल। सर पे रखे उसको, उसको घोल के पी ले, रास्ता नहीं आएगा। तो ये जन्नत का रास्ता है, ये सबीलुल जन्ना है, ये सुबुल सलाम है, ये रास्ता है जो हमें जन्नत के मौसम बताता है। और आज दुख की बात है कि मुसलमान इसको हर तरह इस्तेमाल करता है, समझ के नहीं करता। आप भी तो मानते हैं ना कि इस कुरान को आज आपकी जिंदगी के कितने साल गुजरे, फिर कहीं आपको इस तरह हल्का फुल्का पढ़ने का मौका मिला? अभी भी डेप्थ में नहीं हम जा रहे, आपसे तो ज्यादा ये आमना खुशकिस्मत है। सच कह रही हूँ कि इनकी जिंदगी का चौथा दिन है और अल्लाह की तरतीब पे मैं हैरान हूँ। आप देखिएगा, अगर आप बगैर छुट्टी किए ये पूरा दूसरा पारा कर गई ना, तो आपको पूरा दीन समझ आ जाना है। वही बातें जो लोग कई के साल में नहीं पढ़ पाते, वो आपको अपनी पैदाइश के 1 हफ्ते 10 दिन में मिल जानी है इंशाल्लाह। शौहर बीवी के ताल्लुकात की हदूद तक पता चल जाएंगी, पीरियड्स की बातें, तलाक की बातें, इद्दत की बातें, हज की बातें, कसास, जिहाद, कितने इल्ज़ाम लगे हुए आज इस्लाम पे, सारे इस एक पारे में, क्योंकि वजालनाकुम उम्मतम वसता। ये उम्मत वसत को अल्लाह सिखा रहा है, ये कितनी खुशकिस्मत है कि अल्लाह इनको इस पे ले आया। तो क्या हमसे ज्यादा फिर इनके अंदर अमल नहीं आएगा? हमने बचपन से इधर उधर से बातें सुनी हुई है ना, मिक्सअप है हमारे अंदर। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी इस बहन को कोई तोहफा, कोई चीज़, किताब देते वक्त एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी मोहब्बत में दी होंगी आप लोगों ने, मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि वो तो मासूम बच्ची हैं, उनको तो अभी कुछ पता ही नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ ऑथेंटिक चीज़ आगे किया करें। आज हमारा सबका भी यही मसला है कि हमने इतना कुछ सुना हुआ इधर से उधर से, हमें एग्जैक्ट पता नहीं। तो इस वक्त तो कुरान सामने है, किसी के अफकार नहीं, किसी की फिक्र नहीं, किसी का नजरिया नहीं, हदीस नहीं, और आपके सामने एक एक लफ्ज़ तोड़ के आपको दिखाते हैं। दुनिया की किसी डिक्शनरी से जाके चेक करके चैलेंज कर दें अगर कोई आपको गलत बताए। कभी आपने यहाँ किसी बुजुर्ग का नाम सुना, किसी इमाम का, किसी उस्ताद का नाम सुना मेरे मुँह से, किसी इदारे का नाम सुना? कभी आपने लफ्ज़ नूरुल कुरान का सुना कि इस नूरुल कुरान से जुड़ जाएं और इसके बन जाएं और इसके हो जाएं? अल्लाह के बन जाएं, उसकी किताब आपका हक है। इसलिए इसको जब तक दिल की खाली ज़मीन पे लेके नहीं सुनेंगे, फ़ायदा नहीं होगा। ये कुरान आसमान से तो उतर जाता है, इस दिल पे तब उतरेगा जब आप इसको अमल की किताब समझेंगे। बेजीनात कैसे इंसान का दिल खुलता है, देखिए दो दफ़ा। एक दफ़ा हुदल्लिन्नास, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप कर लें, हुदान का लफ्ज़ जहाँ नकीरा है, कॉमन नाउन है। और आगे आप देखिए कि फिर बय्यिनात मिनल हुदा, अल के लफ्ज के साथ ये कॉमन नहीं या प्रॉपर बन गया, दोनों का फर्क है। आम तौर पे तो गाइडेंस है ही ये किताब, लेकिन इसके अंदर असल गाइडेंस उसको मिलेगी जो कुरान से रजू करेगा, यानी दुनिया की भी कामयाबियां गाइडलाइन और आखिरत की भी आपको इस किताब से मिलेगी। आज हम मुसलमानों ने इसको बंद किया हुआ है, इसलिए मारे खा रहे हैं, इसलिए हम पिस रहे हैं। हर दुनिया में हर इल्ज़ाम मुसलमान पे लगता है, टेररिस्ट, कोई त्यारा गिर जाए कहते हैं मुसलमान ने गिराया होगा, हाईजैक हो जाए मुसलमान का नाम, बिल्डिंग गिर जाए मुसलमान का नाम, अल्लाह दुश्मन नहीं है, लेकिन हम मुसलमान खुद मार खा रहे हैं क्योंकि ये किताब अल बैजिनात और अल हुदा नहीं रही हमारे लिए। और वल फुरकान कैसे बनता है, क्या हक के क्या बातिल, हर वक्त जहनों में सवाल उठते रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अल्लाह कहता है आओ इस किताब को पढ़ लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या हक के क्या बातिल। आप देखिए जैसे सोना कहाँ खालिस होगा, जहां से निकलता है। बाद में उम्मीद है ना कि उसमें मिलावट हो जाए या ना हो। दूध कहाँ से खालिस मिलेगा? भैंस के पास से। तो कुरान और सुन्नत को खोलेंगे ना तो आपको प्योर नॉलेज मिलेगा। और अब बहुत थोड़े लोग हैं जो आपको इस तरह कुरान पढ़ने देंगे दुनिया में। वो कहेंगे तोबा तोबा तोबा, ये औरतों के पढ़ने वाली चीज़ नहीं, ये बड़े बड़े उलमाए कराम की चीज़ है। हालांकि जिस मुआशरे में कुरान उतर रहा था वो उम्मीद थे, अनलिटरेट थे, अनपढ़ लोग थे। खुद हमारे नबी उम्मीद थे, वो कितना अपना नाम नहीं लिख सकते थे, लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते थे। इस किताब को पढ़ने के लिए दुनिया की डिग्रियों की जरूरत नहीं होती। हिदायत से तड़पने वाला दिल चाहिए होता है कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। गूंगों को ये किताब समझ आ जाती है, बहरों को ये किताब समझ आ जाती है, शर्त एक है कि दिल खोल के सुनेंगे। और हकीकत है कि कुरान बंदे पर अल्लाह का ही नाम है। मैं कहती हूँ सारी दुनिया इसकी तरफ कुर्बान। आप लोगों को 6-6 घंटे बिठाई रखें, इधर की बातें उधर की बातें, उनके दिल नहीं खुलेंगे। कुरान खोल के देखें, फिर देखें दिल कैसे खुलते हैं। आप भी देखते हैं ना लोगों को, इधर की मार रहे हैं, उधर की नीयतें भी अच्छी, इरादे भी अच्छे, लोग भी बेहतरीन। आज हम मुसलमानों के कामों में जो कमी है ना, वो ये कुरान नहीं खुलता। तड़पते हैं लोग के, लोग को दीन की मदद करें, कुछ करें, कुछ पैसा दें। मुझे रोना आता है, सच्ची बात है। कई जगह ऐसे मौके मिलते हैं, मेरा दिल करता है कि कभी कोई ना बोले ना कि हमें पैसे चाहिए इस काम के लिए। बस उसकी जगह लोगों को 1-2 घंटा कोई एक ऐसी किताब की बात, कोई सहाबा की बात सुना दें, और फिर उन पे छोड़ दें कि आप चाहते हैं कुछ करना तो कर लें। इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां दुनिया में आ जाती हैं, यकीन करें। मैं कहती हूँ आज तो फर्ज हो जाना चाहिए हर बंदे पे। आज वो मुसलमान हो, कल से उसको कुरान पे डाल दो, उसको हदीस सिखा दो, 1 साल के अंदर वो हमसे ज्यादा बामल मुसलमान बन जाएगा। हमें तब मांगना पड़ता है लोगों से जब हम लोगों को उस चीज का अंदर हिस्सा नहीं बनाते। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं वल फुरकान। बस ब्रैकेट यहां बंद करवाई थी, बंद हो गई, दोबारा रमजान की तरफ इशारा है। फमन शहीद अमिन कुमु शहर फल यसुम, इसको हाईलाइट कीजिए। पस जो कोई तुम में से इस महीने में हाजिर हो, पस वो रोजा रखे। ये है वो हुक्म की आयत जिससे पिछले सारे मरहले खत्म। अब ये फर्ज है कि अब जो जिंदा है, शाहिदा से मुराद जिंदा, मौजूद है, पाले, और लफ्ज शाहिदा में मुशाहिदा भी है, किसका कोई आप में से बताएगा? चांद देखने की तरफ इशारा है। कैलेंडर पहले ना बना के रख लो 10 साल के। नेवर, कभी हमारे बड़ों में ये नहीं था, आपने सुना, जो पिछले 5 सालों से साइंस को पूछते हुए हमने शुरू कर दिया, फलां दिन रोजा होगा, कैसे बताए आपको? फमन शहीद मिनकुम शहर। चांद देखना सुन्नत है, और चांद देखे बगैर, चांद के देखने के ऐलान के बगैर रोजा रखना दुरुस्त नहीं है। आप चांद को अगर उसकी हरकतों में जाके देखें तो आज तो आप हिबल के जरिए जाके मुश्तरी के भी सारे दर्जे देख लेंगे। यहाँ मुशाहिदे की बात है। रोयत हिलाल कमेटी बनती है, कमरी चांद, लोग चांद देखते हैं। इस पे आप सुनेंगे इंशाल्लाह, आपको अल्लाह ने जिंदगी दी, रमजान से पहले सुनाएंगे 100वें रमजान बुक, उसमें एक पूरा टॉपिक है इस मौजू पे कि चांद को देखने में भी जो खुशी है। और यहां वो बात जहन में रखे कि चांद के साथ दिन बदलते हैं, पूरे साल में इबादत करता है बंदा, वरना हर साल एक ही दिनों में रोजा आता और खत्म। अगर सूरज के साथ रोजे का ताल्लुक होता है ना तो एक ही वक्त में होना था, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ बदल दिया, बदल बदल के दिया। लिहाजा का फमन शहीद मिनकुम शहर फल यसुम। अब यहाँ हुक्म चूंकि बदला है ना, तो जो बात पीछे थी ना अब उसकी तकरार है। नोट कीजिएगा, पहले हुक्म क्या था? जो रखे रखे, ना रखे ना रखे, मरीज और वहां मुसाफिर का तस्करा आया। अब चूंकि हुक्म आ गया कि भाई अब रखना है, तो दिल में एक सवाल आता है कि शायद अब मरीज और मुसाफिर को भी हमेशा रोजा ही रखना है, क्वेश्चन बनता है ना। तो तकरार के लिए कह दिया नो नो नो, वो सहूलत अभी भी मौजूद है। क्या? वमन का न मरीदन, जो कोई मरीज हो, अवला सफरिन, या सफर पे हो, फाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, फिर गिनती पूरी करना है दूसरे दिनों में। क्या पता चला कि अब आम दिनों में तो फर्ज हो गया, लेकिन मरीज और मुसाफिर पे वो रुख्सत अभी भी मौजूद है, ये मतलब है। इसलिए इस तकरार को आप एक तरफ से ना समझिए बल्कि दूसरी तरफ से समझें, और अल्लाह के नबी ने इस पे अमल किया, फतेह मक्का रमज़ान में हुई। आप हैरान हो जाएंगे रमज़ान के महीने की बातें सुन के, हर बड़ा काम रमज़ान में हुआ। मक्का फतेह रमज़ान में हुआ, हिजरत रमज़ान में हुई। हम होते तो रोज़े रख के सो रहे होते, हम तो सारे काम भी छोड़ देते, नहीं नहीं छुट्टियां भी दे दें, अब हम नहीं आ सकते, हम नहीं कर सकते। बड़े बड़े काम रमज़ान में हुए, और आपके साथी रोज़े से थे। असर का वक्त करीब था, निढाल। आपने देखा कि साथियों में से कुछ की हालत गैर हो रही है, आपने पानी का प्याला मंगाया और सबको दिखाया और उसके बाद पी के, आपको देखकर सहाबा ने भी रोज़ा खोला। ये सारी सुन्नतें मौजूद हैं, आप पढ़ के देखें कि हमारा दीन कोई मुश्किल दीन नहीं है। इसीलिए तो कहा कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला चाहता है, तभी तो मरीज होने और सफर की सूरत में उसने रुख्सत दे दी। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और वो तुम्हारे लिए कोई तंगी का मामला नहीं चाहता, कोई तुम्हें मुश्किल में नहीं डालता। क्या पता चला कि मुश्किल हालात में दीन को अगर नहीं निभा सकते तो अल्लाह तुम्हें उसरा नहीं पकड़ता। इसलिए अब अल्लाह ताला के इस हुक्म को मानो और क्या करो, वली तुक मिलो लिद्दता था, और ताकि तुम गिनती को पूरा करो। बार बार देखिए तकरार है, गिनती पूरी करनी है। अब यहाँ थोड़ी सी आप भी अपनी गिनती पूरी करके आज सोच लें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हैज़ के दिनों यानी पीरियड्स के दिनों में जो हमारी नमाज़ें छुटती, हम उसकी कज़ा नहीं करते थे, लेकिन हमारे जो रोज़े छुटते थे हम उसकी कज़ा रखते थे। पीरियड्स के दिनों में आपको होता है 5-6 दिन भी अगर होंगे तो 30-35 नमाज़ें हुई। जिस दिन पाक हुए अगर उस दिन आपने फजर के साथ वो 35 नमाज़ें भी पढ़नी चाहिए, पहली आदत छूटने की वजह से शैतान का गलबा होता है, तो फिर तो नमाजें छूट गई, अल्लाह ने माफ़ कर दी। रोज़े साल में 5-6 रोज़े हैं ना, तो रोज़े रखने फ़र्ज़ हैं। तो अब आप सब भी अपने ऊपर इसको लें। हमारे कल्चर में कज़ा उमरी के नाम पे पिछली नमाजें तो लोग पढ़वाते हैं, कितने लोग हैं जो छुटे हुए रोज़े भी रखाते हैं। मैंने तो कुरान की क्लास में कुछ लोगों को देखा है, आपको तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं हमें आज पता चला कि हमें अपने पीरियड्स के छुटे हुए रोज़े रखने थे। आप में से कोई ऐसा है जिसको नहीं पता अभी तक कि जो पीरियड्स में रोज़े छूटते हैं जब से आप बालिग हुई हैं, वो आपको मेकअप करने हैं, गिन गिन के तुक मिलो लिद्दा। इद्दत पे कितना जिक्र आज, गिन गिन के रोज़े रखो। तो लिहाजा अगर आप में से किसी ने कभी कोई रोज़े छोड़े हुए, नहीं रखे, कभी रखे, अंदाज़ा लगा लीजिए अपनी आदत का, तब से जितने दिन है सालों, फटाफट पता चल जाता है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते आप देखेंगे, और उसके लिए आप सर्दियों में रखने शुरू कर दें, पीर और जुमेरात, थर्सडे एंड मंडे का रोज़ा रखें, नफली रोज़ा अल्लाह के नबी रखते थे, आप वो रखना शुरू कर दें। हमारी बहन आमना पे कोई रोज़ा नहीं है, क्यों भला? जी मैं समझ गई थी, इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार करते तो मैं बताती। हदीस में आता है कि जिस दिन कोई इस्लाम कबूल करता है अल्लाह ताला उसके पिछले सब गुनाह माफ़ कर देता है, आपकी पिछली सारी नमाजें भी माफ़ हैं। आज से मेकअप करना है आपने, जिस दिन से आप हुए हैं। अब नमाज आती है कि नहीं, रोज़ा रखना आता है नहीं, जब भी रोज़े आएंगे अपने रखने हैं और नमाज छोड़नी नहीं है, इससे पिछला माफ़ है। और आपका तो नामे माल अब इतना सफ़ेद है, इसको गंदा नहीं करना इंशाल्लाह ताला। और आप सबको भी रखना है, और जो छोटी बच्ची हैं उनके लिए तो भी आसान है। अगर आपको 8-10 साल पुराने रोज़े रखने पड़ते हैं तो उस सालों को गिन लीजिए और रखने शुरू कर दें। मसला है बड़ी उम्र में जो पहुंच गए हैं, वो फिर इसके ऊपर गौर करें। बहरहाल हुक्म यही है, ठीक है? बाकी इसके अहकाम इस वक्त नहीं बता रही, इसमें बारीकियाँ और भी बहुत हैं, लेकिन फिर आप उलझ जाएंगे, ठीक है? हाँ करो के वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और चाहिए कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो, तकबीरात कहो इस बात पर जो उसने तुमको हिदायत दी। इसमें किसकी तरफ इशारा है सोचिए, रमजान के बाद क्या होता है और ईद के दिन क्या होता है? इसमें ईद की तकबीरात की तरफ इशारा है। रोज़ा रख लिया, अब ईद की नमाज भी पढ़ो, तकबीरात पढ़ी जाती हैं। और हदाकुम से क्या मुराद है? तुमको हिदायत दी। किसकी हिदायत दी? रोज़े रखने की तौफीक दी, इस साल दौरे कुरान दिया, इस साल तुम्हें अगले कोर्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। रमज़ान में हिदायत मिलती है ना, और मैं कहती हूँ जिसका एक रमज़ान ज़ाया हो जाता है उसका एक पूरा साल ज़ाया हो जाता है। इल्ला माशाल्लाह। आप में से कौन लोग हैं जिन्होंने दौरे कुरान नहीं किया था लेकिन इस क्लास में है? चंद लोग हैं ना, ज़्यादा लोग वही हैं जो दौरे कुरान कर चुके हैं, राइट? तो कुरान पढ़ने के बाद दिल खुलता है और
जी
कावला अल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये है दीन की रूह। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कुछ भी करो, लेकिन शुक्र के जज्बों से तुम्हारा दिल भराओ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये खैर रखी। कितने ही लोग हैं जिनको अभी भी कुरान नहीं मिला, जिनको अभी भी हिदायत नहीं मिली, इधर उधर टकरे मार रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। अल्लाह ने हम सबको ये अपने दीन की बात के लिए चुन तो लिया है ना, अमल भी आएगा जब सुनेंगे समझेंगे, इंशाल्लाह अमल आएगा। तो लिहाजा अपने आप को इन सारी चीज़ों में रखें। फिर बाकी बहुत सारे काम आता है, बूढ़े के लिए रोज़े का क्या हुक्म है, वो मरीज़ जिसके मर्ज़ ख़त्म नहीं होता, जैसे शुगर है, हार्ट पेशेंट है, तो उसके लिए एक अमूमी सी बात समझ लीजिए कि जिस बीमारी के जाने का उम्मीद ही नहीं है, एक तो वो बीमारी है जो आप रमज़ान में बीमार हुए। अच्छा, कुछ होते हैं ना रमज़ान में बीमार हो तो रोते हैं, हाय अल्लाह आज ही बीमार होना था, और कुछ कहते हैं अब आइए सही वक्त पे बीमारी, रोज़ा तो छोड़ देंगे ना। कुछ होते हैं पीरियड्स देख के उनको रोना आ रहा होता है, और कुछ इंतज़ार करते हैं अल्लाह करे और 4 दिन ही सफ़र लंबे हो जाए। वही मोमिन और मुनाफिक के तकवे की बातें, ठीक है। लेकिन वो बीमारी जो आई और चली जाती है, उनको तो बाद में रोज़े भी रखने हैं, कफ़ारा भी दे दें। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो ख़त्म ही नहीं होती, शुगर है अगर, हार्ट पेशेंट है, बुढ़ापा भी एक बीमारी है, तो फिर कफ़ारा है, बस एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन का खाना किसी को भी दे देंगे तो रोज़ा हो जाएगा। मुर्दिया का क्या हुक्म है, दूध पिलाने वाली औरत, और इसी तरह हामिला प्रेग्नेंट औरत, प्रेगनेंसी की वजह से रोज़े छोड़ेगी, कफ़ारा दे देगी, बाद में रोज़े रखेगी। दूध पिलाने वाली माँ है, बच्चे को दूध पिलाती है, वीकनेस हो सकती है, रोज़े छोड़ सकती है, बाद में रोज़े रखेगी, ठीक है। तो कफ़ारा उनके लिए है जो बाद में रोज़ा यानी रख सकते हैं, साथ ही उनके लिए कफ़ारे के साथ रोज़ा भी है, और दूसरी सूरत में यह है। और वही बात है, फत्तकुल्लाह मस्तता, तुम सवाल आते हैं तो लिख के दीजिए, ठीक है जी, पूछ लें।
सवाल, जैसे कुछ मरीज रोजे रखने के लिए, रखवाने के लिए फितिया देते हैं, क्या फितिया देते वक्त रोजे रखने जरूर होता
जी, मैंने ये अर्ज़ कर दिया, मुझे अंदाज़ा था आप ये सवाल पूछेंगी। देखिए, एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, ये नहीं कि एक को रोज़ा रखाना है, आप इकट्ठा खाना लेके दे दें, अब वो उस खाने से रोज़ा रखें ना रखें, उनके बच्चे खाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अब जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के खाने का एक वक्त का हिसाब लगा के खाना दे दें, ठीक है। और इसके मसाइल आप चाहें तो वेबसाइट से जाके किताब सोम सुन लीजिए, उसमें डिटेल सारी मौजूद है, और किताब आपके कोर्स में मौजूद है, आप घर जाके आज उसका दीदार कर लें खोल के।